नॉन ऑर्डिनरी सेंसिंग नहीं है। तो आपके वो लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं? लौटो का उधर से, नांदी से। कौन कौन आए हैं? एक और दो, तीन, चार, पाँच, छह, नहीं, ठीक है। ये आपकी भाभी हैं, आपकी भाभी है ना?
ये मेरी भाभी है।
ठीक, छह आदमी आई हैं। बैठ बैठ, आप लोगों का कल्याण। बहुत कल तो आपके वो आए थे भाई के लड़के ना?
इसका बेटा था, मेरी भाभी का बेटा।
अच्छा,
वो लोग कल आते हैं दीक्षा के लिए।
कल आएंगे? देखिए एक बात खूब अच्छी तरह से सुनिए। कृष्णा 125 वर्ष तक इस जगत में प्रकट रहे, तो कुछ दिन पहले कृष्ण घर आ रहे थे तो रुक्मिणी और सत्यभामा लज्जित हो करके अपने अंचलों से को जरा घूंघट काट लिया। घूंघट निकालना जानती हो तुम लोग? हाँ, इधर तो नहीं है केवल एक आदमी को देख रहा हूं बस और नहीं। बैठो बैठ, व्हाई यू और डोंट डिस्टर्ब, यू शुड। जब उनका लड़का प्रद्युम्न और उसके बेटे हैं अनिरुद्ध, प्रद्युम्न जी कृष्ण के लड़के हैं, तो उनको देख करके प्रद्युम्न, वो बेटा किसी प्रकार से बच करके आया घर में पहली बार, उसको किसी दैत्य ने चुरा लिया था, अपहरण कर लिया था, तो उसको देख करके इन लोगों ने लज्जा की, रानियों ने, ये कृष्ण ही आ गए। किंतु वो कृष्ण नहीं थे, उसका कृष्ण का बेटा था, उन्हीं का बेटा, किंतु लज्जित होकर के घूंघट निकाला, फिर पीछे मालूम हो का, अरे ये तो मेरा बेटा है। उस समय में कृष्ण 100 वर्ष से ऊपर के थे और दोनों का एक रूप एक ही जैसा मिलता था। अभी कृष्ण को इतनी उम्र में भी मोछे नहीं आई और नवयुवक जैसे किशोर जैसे लगते थे। रामचंद्र जी 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया रहे इस जगत में, किंतु कि सब समय वो 16 वर्ष जैसे बड़े सुंदर दिखते रहे, मोछ टोच दाढ़ी ये नहीं आई, केश नहीं पके, नवयुवक किशोर जैसे लगते रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान होते हैं बड़े सुंदर होते हैं, उनकी ये जो युवावस्था है कभी वो बूढ़े नहीं होते, दांत नहीं टूटता, उनको कोई रोग नहीं होता, विष भी हजम कर लेंगे, गोवर्धन पर्वत को उठा लेंगे, समुद्र को बांध देंगे, अपने सेवकों से बंधवा देंगे, अद्भुत अद्भुत कार्य कर सकते हैं, सांप भी उनको काटेगा तो कुछ नहीं होगा, आग भी खा लेंगे, खाया कृष्णा ने? किंतु आजकल कुछ ऐसे भगवान हो रहे हैं जगत में पैदा, जैसे भुईफोड़ होता है, भुईफोड़ जानती है तुम लोग?
मिट्टी से कुछ निकल,
जैसे कोई बीज है फेंक दिया जाए तो उससे हजारों पौधे उग जाते हैं, आजकल जगत में बहुत से ऐसे भगवान हो रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, मरने आए हैं, थोड़ी सी जादू विद्या सीख ली अब बस भगवान बन गए। यदि वो कुछ हद तक कहते ये जो मैं ब्रह्म हूं तो भी कोई बात नहीं, उसको हम लोग किसी तरह से निपटा लेंगे, हम भी ब्रह्म है, जीव सभी ब्रह्म है, किंतु परब्रह्म हम नहीं है, परब्रह्म कृष्ण है। मैं कल जो बतलाया था श्रीमद् भागवत का या वेदांत सूत्र का हमने जो बतलाया था, अहो भाग्यम, ये श्रीमद् भागवत का है, अहो भाग्यम नंद गो ब्रजौ कुसाम जन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, कृष्ण है। वो कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, दांत नहीं टूटेंगे उनके, केश नहीं पकेंगे, अथर्व नहीं हो जाएंगे, ये भगवत्ता का लक्षण है। राम में भी वही, निशिंग जी में भी, सब में ऐसा है। किंतु आजकल कुछ लोग थोड़ी सी जादू विद्या सीख लिया, आंख बांधने का वो कौशल सीख लिया थोड़ी सी, और भगवान ब्रह्म बन जाते हैं। तुम लोग ऐसे भगवान पर विश्वास मत करना, कभी भी भगवान नहीं है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं मैं भगवान हो गया, ब्रह्म हो गया, थोड़ा सा आग उनके मुख में दे दिया जाए तो जरा इसे हजम कर लो तो एक प्याली की बात क्या है, एक छोटा सा विष भी उनको थोड़ा सा दे दिया जाए और 10 मन का पत्थर, गोवर्धन तो छोड़ दो, 10 मन का पत्थर ही उठा ले तो मानेंगे जी भगवान है। किंतु ऐसा जो लोग करते हैं मैस्मेरिज्म के द्वारा, वो भगवान नहीं है, भगवान पर विश्वास मत करो, ये भगवान है। कुछ दिन पहले कलकत्ते के एक बीसी रॉय या क्या नाम,
किसी सरकार
जादूगर, वो गए पशुपतिनाथ में या कहाँ, वहाँ जहाँ रहते हैं वो हमारे साईं बाबा आधुनिक, तो उन्होंने अंधकार घर को अंधकार धुएं से कर रखा और हाथ में जो रुमाल है उसको उनके हाथ में फेंक रहे हैं मंत्र के द्वारा। कहने यही आपकी भगवत्ता है, इसे तो मैं अधिक जादू मैं जानता हूं, उसने भी उसको उनके हाथों में फेंक दिया। कहे ये भगवत्ता नहीं है, लोगों को ठगो मत, भगवान जेल नहीं जाता, जेल में जो रहता है उसको भी छुड़ा देते हैं, कृष्ण ने छुड़ाया ना देव की वसुदेव को, तो भगवान बूढ़ा नहीं होता। थोड़ी सी मैस्मेरिज्म के द्वारा किसी को भगवान मत समझना, भगवान कृष्ण ही भगवान है, शास्त्रों में उसके पहले ही लिख दिया एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। राम के संबंध में पहले ही वाल्मीकि जी ने घोषणा कर दी ये भगवान है। यदि ऐसा बात है ये सभी ब्रह्म है भगवान है, तो शुकर और गधे और कुकर भी तो भगवान है तब, मेरी बात को समझो। सभी यदि ब्रह्म है, सभी भगवान ही है, कृष्ण ही था, तो कुकर और गधा था तो वो कुत्ते और गधे हुए, ऐसा नहीं, कुत्ते गधे और ये सब एक कृष्ण नहीं हो जाएंगे, इस चीज को ठीक रखना। ये सबसे महापाप यदि है तो ये महापाप है। एक बार ऐसे ही मथुरा में एक आदमी आए, बोले जैसे मैं तो ब्रह्म हूं, ओ आप ब्रह्म है, मेरा सौभाग्य है जो आज आपके दर्शन हुए, इधर सुनो आज सौभाग्य है ये तुम्हारा हमारा दर्शन आपने दिया। मैंने कहा जे अरे बैठो जरा इधर सुनो, वो घर में जो रसोई बन रही है, लकड़ी जल रही है आग की में, वो लकड़ी का एक लकड़ी जलती हुई लाओ, आज ब्रह्म है आए हैं, इनका पूजन करना है, तो पहले मैं देख लूं ये ब्रह्म है कि नहीं, तो इनके मुख में थोड़ा सा आग दें जे ये इसको निगल सकते हैं कि नहीं। बस वो भागे वहां से, मैंने कहा पकड़ो और भाग करके चले गए। दिल्ली में बहुत से लोग ब्रह्म बन रहे हैं और परस्पर लड़ते हैं, अरे ब्रह्म क्या लड़ता है परस्पर, उनको भारत की रानी नहीं सुहाई तो वो अमेरिका में गए, वहां से वो को सीता का या गौरी जी का विवाह कर लाए। ये ब्रह्म का लक्षण नहीं है, इसलिए लोगों को ठगते हैं। इसलिए ठगों से बच करके रहना, करा करके कृष्ण को ही भगवान मानो, राम को भगवान मानो। ये हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में सबका इनका ये है। हमारे शंकराचार्य जी थे, सब कहा उस विशेष कारण से, किंतु अंत में उन्होंने इस चीज को माना और बोले गोविंदम भजु, गोविंदम भजु, गोविंदम भजु मूढ़ मते, नहीं नहीं रक्षति दुख कृत करने, व्याकरण पढ़ने से ही नहीं हो जाएगा, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। अभी केश पक गए और इसलिए कृष्ण को ही भगवान मानो। किसी के कहने से थोड़ी सी कुछ दिखला दिया, मैं ब्रह्म हूं, मत मानो। इस चीज को समझो, भगवान ने बुद्धि दिया है, युक्ति दिया है, उसे विचार करो। भगवान के लक्षण होते हैं वो सचमुच में इनमें है कुछ। हनुमान जी ने कभी भी इतने बलवान होने पर भी गोवर्धन पर्वत को भी उठा करके ला रहे थे, ये उन्हीं का लाया हुआ, ये गोवर्धन पर्वत जो वृंदावन में है, जिसको कृष्ण ने उखाड़ा था, उसको भी उखाड़ लिया तो वो हाथ पर लेकर के दौड़ रहे थे, उड़ रहे थे आकाश में। उन्होंने कहा जिस मैं भगवान हूं, शंकर जी ने आज तक कहा कि मैं भगवान हूं, नहीं कहा। इसलिए भगवान ही भगवान है, हम लोग भगवान नहीं हो सकते हैं, दूसरा कोई, हम उनके दास पार्ट और पार्सल हैं। इस चीज को सब समय याद रखनी चाहिए। बैठो, बैठिए। ठीक है, अच्छा। अभी ये भी सुनना है, नहीं सुनने से वो तो ठीक है, साधारण आदमी है वो मनुष्य को ही भगवान मानने लगता है, पत्थरों की भी पूजा करने लग जाते हैं, समझते कि ये हो सकता है कि शालग्राम ही शिला हो, कोई पत्थर रख करके और उसकी पूजा करने लगा, देखा देखी सभी उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो हम लोगों को विचार करके देखना, भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि से, विवेक से विचार करके, शास्त्रों से मिलान करके, तब किसी को हम कहेंगे ये भक्त हैं। सभी को भी भक्त नहीं कह देंगे, सभी भक्त नहीं है। एक बाघ आ रहा है, उसको भी कहा जाए ये ब्रह्म है, हे ब्रह्म, हे भगवान आपको नमस्कार है, नीचे जाएंगे उनका चरण छूने तो आपको खा जाएगा। अंडरस्टैंड, इफ यू आर थिंकिंग दैट ओ टाइगर ब्रह्म हैज कम, ओ टाइगर ब्रह्म, ओ नमस्कारम नमस्कारम, एंड व्हेन यू विल गो टू टच हिज फीट एंड ही विल टेक यू इन हिज स्टोमक, डोंट टेल ओ माय डियर फ्रेंड ब्रह्म, ओ स्नेक ब्रह्म, and then he will bite you. तो ये सबको विचार करके अच्छी तरह से बूझ समझ करके चलना चाहिए। भगवान ने अकल दी विचार करने के लिए। हमारे गुरु जी कहा करते थे, हम तुम्हारा कान चाहते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि कान जिस ग्रहण करता है, शब्द ग्रहण करता है, उसको और दूसरे इंद्रियां, हाथ पैर नाक मुख, उस पर कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। और एक आम है, उसको हाथ से समझा जा सकता है, नाक से उसका टेस्ट लिया जा सकता है, मुख से उसका रसास्वादन कर सकते हैं, मीठा है खट्टा है क्या है, किंतु कान क्या करेगा उसे, कुछ नहीं। इसलिए गुरु जी कान मांगते हैं, जे कान दो, इसको शुद्ध करके इसमें हम शुद्ध शब्द ब्रह्म देंगे, उस शब्द ब्रह्म के द्वारा, हरि कथा के द्वारा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, हम और कुछ नहीं चाहते। ये शब्द ब्रह्म होना चाहिए। जो लोग हरिनाम करते हैं सभी का शब्द ब्रह्म नहीं है। जिन लोगों ने साधन किया वाल्मीकि जैसे, उल्टा नाम कह करके भी उनको सिद्धि इस विषय में हुई। भगवान के नाम में सारी शक्तियां स्वरूप की है, उनके स्वरूप कृष्ण नाम में और कृष्ण राम नाम इत्यादि में। चाहे तो एक सेकंड के अंदर में कोटि कोटि ब्रह्मांडों का लय कर देंगे, और एक सेकंड के अंतर्गत में फिर कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना भी कर सकते हैं। बड़े दयालु हैं, सारी शक्तियां नामों में भर दी है, हरे कृष्ण इत्यादि में। उल्टा सीधा जैसा भी कहोगे उसमें कार्य होगा ही, चाहे श्रद्धा से करो, चलते फिरते छींकते समय में फिसलते हुए भी जैसे तैसे कर दो। अजामिल ने अपने बेटे का नाम रख दिया नारायण, किसी ने अपने कुत्ते का नाम हरि रख दिया, वो कर रहा है, वो भी काम करेगा, संसार बंधन से तो वो मुक्त करा ही देगा। इतनी शक्ति है जो स्वरूप में नहीं है, इसलिए ये सब करने की इनमें शक्ति है, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए शुद्ध रूप में। तो मैं ये कह रहा था, भले ही वो कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, अच्छा हम उसको किसी तरह से रिकाउंसाइल कर, किंतु वो यदि ये कहता है ये वही है कृष्ण साईं, राधे साईं, सीता साईं, तो महाघोर अपराधी है, उसका दर्शन करने से भी पाप होगा। जो सीता जी राम के साथ नहीं बैठेंगी, जो राधा जी राम के साथ में नहीं बैठती, और उसको साईं के साथ में जो बैठाना है तो उसका मुख जल करके खाक हो जाए। कोई कहते हैं वो तो नहीं कहते हैं, उनके शिष्य लोग कहते हैं, तो उस शिष्य को मना तो करता है। इसलिए बड़ी ये सब बेढप बातें हैं, तुम लोग इसमें विश्वास न करके भगवान का भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। लाख जन्म में साईं साईं कहने से कुछ नहीं होगा, और यदि राधा जी का नाम जोड़ा या सीता जी का, तो नरक में कोटि कोटि जन्म जन्मांतरों में नरक जाना पड़ेगा, याद रखो। यदि सुनने से भी होगा, ये हमने सुना ना, हमको स्नान करना पड़ेगा, गंगा और जमुना सरस्वती इत्यादि का नाम लेकर के, और तब फिर स्नान करेंगे कपड़े के संग पवित्र होने के लिए। इसलिए खूब सावधानी के साथ में रहना, और नहीं तो जैसे तैसे को भी ब्रह्म कह दे करके और भगवान मांग करके हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, ऐसा मत करना। इसलिए शंकराचार्य जैसे व्यक्ति ने भी ब्रह्मवाद का प्रचार किया, किंतु उनका ब्रह्मवाद प्रचार और साधारणों का एक नहीं है, एक नहीं है। उसी कारण से भगवान के आदेश से उन्होंने ऐसा किया, प्रचार किया, हमारे हमको छिपाओ, सभी लोग हमारा भजन करके हमसे हमको तंग करेंगे, अपनी संसारिक वस्तुओं को मांगेंगे, और भक्त कुछ नहीं मांगता, वो अपना सर्वस्व दे देता है। तो भक्तों के हृदय में भी शाम करता हूं, किंतु अब भक्तों के पास नहीं, वो ये लाओ ये दो ऑर्डरली जैसा वो हुक्म देंगे, ऐसा नहीं। इसलिए भगवान राम कृष्ण है, इनका भजन करके जीवन सार्थक। हाँ थोड़ा सा कल मैं कहाँ तक बतलाया, कभी नहीं गए, राधिका जी भी नहीं गए। कृष्ण जब, हाँ ये बतलाया था, ये कंस को मारा, कंस को मार करके उसका संस्कार जो दाह संस्कार इत्यादि कराया, जमुना में विश्राम घाट में स्नान किया, स्नान करने के बाद में हाँ उनसे मिल नहीं पा रहे थे नंद बाबा से, किंतु एक समझना चाहिए जी, कृष्ण एक ही साथ में हजारों लीलाएं कर सकते हैं और कोटि कोटि स्वरूप भी धारण कर सकते हैं, जैसे गोपियों के साथ में एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण, दो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, दो कृष्णों के बीच में एक गोपी, अद्भुत लीला की कोटि कोटि स्वरूप में देखे गए। और द्वारकापुरी में एक ही साथ में 16108 रानियों के साथ में देखे गए, कहीं किसी से बात कर रहे हैं, कभी कुछ दूसरी जगह कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कभी दान कर रहे हैं, एक ही कृष्ण एक ही समय। नारद जी को भी आश्चर्य हो गया। तो कृष्ण नंद बाबा के साथ में एक प्रकोष्ठ में लीला करते हुए वृंदावन में लौट गए, जो अक्रूर के संबंध में बतलाया था, और एक प्रकोष्ठ में मथुरा में ही रह गए, फिर मथुरा से चले गए द्वारका। बहुत तरह की प्रकोष्ठ में वैकुंठ में लीलाएं अनंत हैं, अनंत प्रकोष्ठ होते हैं। प्रकोष्ठ समझते हैं, प्रकोष्ठ माने होता है जैसे एक सिंहासन है, उसमें 3-4 भाग कर दो, उसमें ठाकुर जी करो, ये घर पूरा है, इसमें कितने प्रकोष्ठ होंगे, कितने कमरे हैं, 5-7 कमरे हैं ना, 3 हैं, 3 कमरे, ये 3 प्रकोष्ठ हुआ। किसी किसी घर में आप लोगों के ऑफिस में 50-100 प्रकोष्ठ है। ऐसे कृष्ण की बहुत प्रकार की लीलाएं बैकुंठ में चलती हैं। तो एक प्रकोष्ठ से तो कृष्ण और बलदेव वृंदावन में लौट गए और दूसरे में वहां रह गए, जो रह गए वसुदेव जी और देवकी, उग्रसेन ने इत्यादि विचार किया। ये तो जब कभी भी वृंदावन पास ही में है चला जाएगा और फिर उसे लाया नहीं जा सकता, इसलिए ये समझे कि मैं इनका बेटा हूं। और इस चीज को संस्कार देने के लिए यज्ञ पवित देना जरूरी है, बिना यज्ञ पवित के ये नहीं समझेगा। यज्ञ पवित कौन कराता है, बाप कराता है, और यदि वो नहीं खुद कर सकता तो किसी एक पुरोहित को ला करके और उसके द्वारा करवाता है। उसे क्या होता है, ये मेरा बेटा है, ये होगा मैं जादव हूं, जादव का मैं पुत्र हूं, और मैं मथुरा में मैं जन्म, मेरा मथुरा ही घर है। इस संस्कार को देने के लिए यज्ञोपवीत हुआ, यज्ञोपवीत में सबको निमंत्रण दिया गया, इंद्रप्रस्थ में पांडवों को भी दिया गया, और जहां जहां उनकी जनकपुरी में और मिथिला में या इधर उधर जहां भी उनके सब संबंधी लोग थे, सबको निमंत्रण पत्र गया, जैसे कि हम लोगों के समाज में होता है। किंतु वृंदावन पास ही था, वहां पर निमंत्रण नहीं दिया गया या न बतलाया गया कि कृष्ण का यज्ञ पवित्र हो रहा है। क्यों नहीं बतलाया गया, निमंत्रण क्यों नहीं दिया, क्या वसुदेव जी भूल गए, तो देवकी ने याद क्यों नहीं करा दिया। इसलिए कि यदि भूल से वहां पर खबर पहुंच गई और नंद बाबा यशोदा मैया पहुंच गए, तो फिर कृष्ण को मथुरा में रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जानबूझ करके यह खबर नहीं दी गई, निमंत्रण नहीं दिया गया। अब कृष्ण का मुंडन कराया गया बलदेव जी का, बिना अलंकारों के ही उनके अंदर से मुक्ता जैसी कांति निकलती है, बड़ी अद्भुत सुंदर, केश रहने पर तो और सुंदर, केश नहीं रहने पर और सुंदर, और उनको लाल कपड़े दिए गए और पादुका दी गई है, लकड़ी की पादुका होती है, और बामन जी जैसे उनको ताल वृक्ष के छत्री भी दी गई है, और यहाँ पर जैसे विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं वैसा उनका वेश बनाया गया है। तो यज्ञ पवित्र किस लिए होता है? यज्ञ उपवीत, उपवीत तो उप माने समीपे, जैसे भगवान के समीप लाया जाए किसी जीव को वेद इत्यादि शास्त्र पढ़ने के लिए उपनयन होता है। संसारिक में विवाह शादी करने के लिए नहीं, वो तो एक प्रथा बन गई है। तो कृष्ण को और बलदेव जी को उपनयन दिया जाए, हवन इत्यादि हुआ, यज्ञ पवित्र विधि के साथ में गर्गाचार्य जी ने किया। उसका कहते बेटे अब तो तुम्हारा यज्ञ पवन हो गया, अब तुम मैया के पास में जाकर के मैया भिक्षा दो, और पिताजी के पास में भिक्षा लेकर के सब लोगों से अंततः सात घरों से भिक्षा मांग करके ले आओ। ये क्यों? अभिमान को दूर करने के लिए सब जगह भिक्षा मांगना पड़ता। तो कृष्ण उस समय उनको झोली बना दी, पीले वस्त्र की झोली, और बलदेव जी को भी, और कहा जे जाओ भिक्षा ले आओ। उस समय देवकी जी खड़ी थी सोने के थाल में, असर्थी और मोहर भरी हुई थी, और कृष्ण सोच रहे हैं ये मेरी मैया ने कहा, देवकी को कभी भी मैया मुख से नहीं कहा, उनको लज्जा आती है मैया कहने में, इसलिए सोच रहे ये मेरी मैया ने कहा था, जब तुम्हारा उपनयन होगा तो रत्नों से मैं तुम्हारी झोली को भर दूंगी। और कृष्ण इसी का स्मरण करते 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 एकदम जोर से रोने लग गए, मैया को देख करके भी नहीं देख रहे, और यशोदा मैया का स्मरण किया, मैया मैया कह करके जोर से रोते हुए जमीन पर गिर गए और मूर्छित हो गए। बलदेव भी रोने लग गए, सभी लोगों ये मैया को देख करके भी नहीं देख रहा है, अरे मैया तो कृष्ण ने कभी इनको समझाई नहीं, उनसे मक्खन और रोटी मांगने में भी तो इनको लज्जा लगती है, रोहिणी मैया किसी प्रकार से उनको खिलाती पिलाती। तो इस तरह से उसका स्मरण करके कृष्ण वहां पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। कृष्ण का मन कैसा है, वो यहां रहते हुए भी यहां नहीं रह रहे हैं, और उधर यशोदा मैया की बात सुनो, जब से कृष्ण गए हैं खाना पीना बंद, रसोई घर में मकड़सों ने जाल बुन दिया, बर्तन मजे नहीं औधे हुए पड़े हुए हैं, चूल्हे लीपे पुते नहीं, किसके लिए रसोई बनाए, कौन बनाए, जब कृष्ण ही नहीं खाएगा तो दधि मंथन किसके लिए जरूरत नहीं, दिन रात रोती रहती हैं। अद्भुत उनकी दशा, एक दिन दोपहर में उठी चिलचिलाती हुई धूप, सूर्य की प्रखर किरणें चल रही, कोई पृथ्वी में पैर नहीं रख सकता, और जो यशोदा मैया कहीं जाने की तैयारी कर रही, कृष्ण की छोटी सी बांसुरी और उनके खिलौने और झिंगुलिया माने वस्त्र उनके पहनने के पोटली में बांध ली। एक सखी आई, जब तू पागल होकर के सखी कहां जा रही हो, कहां जा रही, तो मैं वहीं जा रही हूं जहां हमारा बेटा है। फिर बोली मैं जाऊंगी मथुरा, और वहां पर देवकी रानी से कहूंगी तू मुझे नौकरानी रख लो, तुम्हारे बेटे को की सेवा करूंगी, कुछ तुमसे लेंगी नहीं, कुछ भी कपड़े लत्ते पैसा नहीं, और तुम्हारे बेटे की सेवा करूंगी, और एक बार दिन भर में रात भर में दर्शन कर लिया करूंगी। और ये कहते हुए वो भी मथुरा में वृंदावन में नंद भवन में मूर्छित होकर के की। कैसा अगाध प्रेम है माताओं को भी हृदय में, ऐसा ही प्रेम कृष्ण के प्रति हो। नंद बाबा की तो पूछो ही नहीं, ऐसे कृष्ण ऐसे वृंदावन को, सखाओं को, माता पिता को, ब्रज को, गोवर्धन को, जमुना पुलिन को कभी भूल सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए कहीं भी रहें किंतु उनका हृदय ये वृंदावन, इसलिए वृंदावन को छोड़ करके वो कहीं नहीं जाए। गौर प्रमानंदे जय 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 श्री राम। कितना बज गया?
पौने
बारह बज गया है।
You're talking about Krishna and Vrindavan.
You will give prasadam to them? Yes. Oh, offer and try to distribute. Haan, bolo.
So, one of Krishna's favorite pastime places is Govardhan Hill. So how we, with our material senses, we think that with Govardhan being a hill, how could Krishna have enjoyed playing there, since you have to climb it and it's very steep and tiring? Is it that for Krishna it was like, it felt like a flat level ground always, and not that he was climbing?
Pundarik, क्या कह रही हैं बोलो?
कह रही हैं हम अपनी जड़बुद्धि से समझते हैं गोवर्धन पर्वत तो बड़ा सीधा खड़ा है, तो हम ये भी सुनते हैं कृष्ण उसमें नाना प्रकार की लीलाएं करते थे, तो इस प्रकार गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ने उतरने बड़ा कष्ट होता था, तो फिर वो आनंद के साथ लीलाएं कैसे कर पाते?
ओ, कृष्ण को चढ़ने में बहुत कष्ट होता,
उतरने में
फ्लैट एरिया है ना,
नहीं। कृष्ण उस समय बहुत लंबे थे, he was very tall, and keeping one his feet here, and he may have given his next feet on the top of Govardhan quickly, and he was very happy to go and to स्लिप फ्रॉम अपसाइड टू डाउन, वो सब खेला करते थे, फिसलने की लीला। हैव यू सीन इन काम्यवन ऑल्सो, इन सखीगिरी पर्वत, हैव यू सीन लाइक दैट? दे यूज टू प्ले इन गोवर्धन, सो मेनी कुंजेस अपसाइड, ऑल्सो सो मेनी ग्रेप्स, ग्रोप्स, केप्स, and so many things, and Dan Ghati, as you are now seeing, Dan Ghati was not like this, or Sakri Khor, Barsana. So for Krishna it was like amusement, a very playing place. And Govardhan is not like that 5000 years before he was. So many changes have come. आप तो अभी कुछ दिन रहेंगे ना?
जी, भारत पहुंचना चाहिए था 21 जनवरी को,
तो आपका वीजा है?
यहाँ का तो भी है, यहाँ का तो 3 वर्ष के वीजा के लिए कंतु भाई ने अप्लाई किया
हुआ,
पर अभी मुझे जाना है क्योंकि 7 मार्च से 17 मार्च तक कुछ कार्यक्रम है हमारे।
कहाँ पर?
दिल्ली।
दिल्ली में,
इसलिए उसके पहले पहुँचना।
ठीक, आप फिर लौट करके आ गए?
फिर जून
जुलाई तक। यहाँ पर अपना कोई आश्रम बनाए हैं या ऐसे ही अभी जा रहे हैं गृहस्थ भक्तों?
Thus ends the morning darshan at the house of Yogesh Prabhu in Lautoka, Fiji, on the 6th of February 2002. Hare Krishna.